रहमान रहीम। आज जिस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करने की के का सोचा है वो जैसे कि आपके शायद इश्तहारात या पोस्टर के ज़रिए से मालूम हो गया होगा, शुगर और ब्लड प्रेशर के हवाले से, डायबिटीज़, मेलाइटिस एंड हाइपरटेंशन। हम लोग जो हैं वो आम तौर पर ये होता है कि कुछ चीज़ें हो रही होती हैं हमारे जिस्म में, और जिस्म के अलावा हमारे माशरे में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, हम लोग बेखबर होते हैं। लेकिन आखिर में जब कोई मसलन कोई बॉम ब्लास्ट टाइप की चीज़ होती है तो सबको पता लगता है कि कुछ हो गया है। इसी तरह से हमारे जिस्म में भी मसलन कभी हार्ट अटैक का आपने नाम सुना, हार्ट अटैक हो गया किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त अहबाब को, या हो सकता है यहाँ पर जो अफराद बैठे हैं उनमें से किसी को खुदा न खास्ता हुआ तो पता लगता है हार्ट अटैक हो गया, या मसलन फालिज हो गया, होता है ना, मालूम होता है एकदम से क्या हुआ था। ठीक ठाक थे हम तो, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक चलते फिरते आदमी थे, एकदम से हार्ट अटैक हुआ और मसलन अल्लाह को प्यारे हो गए या जाके कार्डियो में दाखिल हो गए, बाईपास बता दिया। होता है ये, सब लोगों ने सुना है, कोई ऐसा तो नहीं जिसने कि ये बात ना सुनी हो कि भाई हार्ट अटैक हो गया और अस्पताल में दाखिल हो गए, बाईपास बता दिया या एंजियोग्राफी बता दिया, एंजियोप्लास्टी बता दिए। ये लफ्ज़ हैं वो इतने कॉमन हो गए कि इसके शायद डिफ़ाइन करना, उसकी तशरीह करना भी शायद ज़रूरी नहीं है। तो हम लोगों को आमतौर पर तभी मालूम होता है, हम लोग तब जागते हैं जब कोई बॉम ब्लास्ट टाइप की चीज़ होती है। तो हमारे जिस्म में हम कहें कि वो बॉम ब्लास्ट होता है तो वो ये दो तीन चीज़ें होती हैं, या तो फालिज का अटैक हो गया कि हाथ पैर चलना जो है वो बंद हो गए, या फिर हार्ट अटैक हो गया, दिल बनना जो है वो दिल ने काम करना जो मसलन छोड़ दिया और दिल में दर्द उठा। मगर इसके पीछे जो है वो तकरीबन 15 से 20 साल का एक प्रोसेस है जो हो रहा होता है। जैसे कहते हैं ना पाकिस्तान में जो है वो फ़िरका वारियत की बुनियाद जो है वो मसलन ज़ियाउल हक़ के दौर में पड़ी, ठीक है, उन्होंने जो है ये सारा सिलसिला शुरू किया था और आज हम उसका नतीजा जो है वो मसलन भुगत रहे हैं। तो जो 15-20 साल तक हम बद एहतियातियाँ कर रहे होते हैं और अपनी सेहत की निगहदाश्त प्रॉपरली नहीं कर रहे होते ना, उसका नतीजा ये होता है कि इंसान को हार्ट अटैक या फालिज होता है। तो आज जो हमारा जो लेक्चर है ना वो बुनियादी तौर पर दो साइलेंट किलर्स के हवाले से, साइलेंट किलर का जो है बहुत यानी वाज़े है, यानी ख़ुद पता लग जाता है साइलेंट किलर कैसे कहते हैं, यानी इसके कोई सिम्टम नहीं होते, इसका कोई दर्द नहीं होता। अगर किसी को शुगर हो ना या ब्लड प्रेशर हो तो कहीं जिस्म में दर्द नहीं हो रहा होता, या कोई ज़िंदगी में हमारे रुकावट नहीं पड़ रही होती है, ठीक है, मगर ये अंदर ही अंदर जो है वो कुछ ऐसी तब्दीलियाँ हमारे आज़ा में और हमारे नर्व्स में और हमारी आर्टरीज़ में और हमारी वेंस में ला रहा होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो बेकार होती चली जाती है। और एक हद ऐसी आती है कि जब हमारी दिल की मसलन शरियाने जो हैं वो इस कदर अंदर उसके जो वो चर्बी जम चुकी होती है, अंदर इतनी ख़राबी पैदा हो चुकी होती है कि वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती हैं, खून की सप्लाई जब दिल को रुकती है तो हम कहते हैं हार्ट अटैक हो गया। तो ये शुरू कहाँ से होता है, ये इन दो साइलेंट किलर्स से होता है। मैं आपको मज़ीद वाजे करके बताऊं कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस एक हमारे जिस्म में एक प्रोसेस है, इसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, यानी हमारे खून जिसमें दौड़ रहा है, हमारी शरियाने जो हैं आर्टरीज जो हैं वो सख्त हो जाती हैं, इस प्रोसेस का नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। इसके जो 4 कॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिन वजूहात की बिना पर यह होता है वो 4 हैं। मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ, उसके बाद छोटी छोटी और बहुत सारी चीज़ें भी हैं। 4 मोटी मोटी बातें हैं, स्मोकिंग, सिगरेट नोशी की बुरी आदत जो कि इसका एक वजह है, दूसरा खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार का बढ़ जाना, तीसरा शुगर यानी डायबिटीज़ मेलाइटिस, और चौथा है ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। तो ये वो 4 वजूहात हैं जो कि आम तौर पर एक दूसरे के साथ मिलती हैं और उसके बाद हमारी खून की शरियाने जो हैं वो सख्त होती चली जाती हैं और उनका जो खून जहाँ से गुजरता है, ल्यूमन जो होता है उसके अंदर जो सुराख होता है वो तंग होता जाता है, और हत्ता ये कि वो इतना क्रिटिकली कम हो जाता है कि इंसान को जो है वो हार्ट अटैक हो जाता है। तो इस तमहीद के बाद यानी आपको कम अज़ कम इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे टॉपिक की अहमियत क्या है, क्यों हमने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है, क्या हमारी ज़िंदगी के अंदर इस टॉपिक को समझने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं और ना समझने से जो क्या नुकसान हमें हो सकता है 10 साल बाद, हो सकता है 20 साल बाद जो है हमें भुगतने पड़ सकते हैं। तो यानी अगर कोई शख्स जो है वो एक किसी से उधार लेना शुरू करे, हाँ भाई 100 रुपये उधार हो गया, 200 रुपये उधार हो गया, 500 रुपये उधार हो गया, यहाँ तक तो बस में आता है, फिर 1000 रुपये उधार हो गया, वो उधार दिए चला जा रहा है, हम लिए चले जा रहे हैं, एक वक्त आएगा वो आएगा आपके घर पे आके कहेगा भाई अपने घर की चाबी दे दें और जाइए खुदा हाफिज। ठीक है, तो हमें एकदम से लगता है कि यानी कोई बहुत बड़ा नुकसान जब हमें होता है ना, तो हमें अंदाज़ा होता है कि प्रॉब्लम क्या हो गई है, उससे पहले उधार पे चल रहे हैं। तो ये शुगर ब्लड प्रेशर जो है ना, ये भी बिल्कुल उधार की तरह से है। ठीक है, जब एक वक्त आता है ना और जब वापस करने की बारी आती है, तो या दिल देना पड़ता है, या दिमाग देना पड़ता है, या पांव कटवाने पड़ते हैं, या अंधापन हो जाता है, या गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, डायलिसिस पे आ जाता है, गुर्दे तब्दीली की बात आ जाती है। तो जब हमें वापस करना पड़ता है ना, तो क्या वापस करना पड़ता है, इसका थोड़ा सा हमें जो है वो अंदाज़ा लगाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपनी तमहीद को जो है वो ख़त्म करता हूँ, एक मरतबा दुरूद पढ़ दें। वक्त कितना है, वक्त कितना है हमारे पास, 20 मिनट हैं अभी, अंदाजन कितना वक्त है, 20-25 मिनट हैं। तो हम लोग बात शुरू करते हैं शुगर या डायबिटीज़ मिलाइटिस से। शुगर की मुख्तलिफ इकसाम हैं। शुगर का आम तौर पर जो मतलब लिया जाता है वो ये है कि नाश्ते से कबल खून के अंदर शुगर की मकदार 126 मिलीग्राम से ज़्यादा हो, और नाश्ते के या खाना खाने के 2 घंटे के बाद खून के अंदर शक्कर की मकदार 200 से ज़्यादा हो। तो हम कहते हैं कि इस पेशेंट को जो है, इस आदमी को जो है वो शुगर की बीमारी लाहक हो गई है। इसकी मुख्तलिफ अकसाम है। पहली किस्म जो है यानी उसको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, जो कि नौजवानों के अंदर शुरू होती है, उसके अंदर इंसुलिन की ज़रूरत होती है, यानी पहले दिन से ही इंसुलिन की मसलन ज़रूरत होती है। दूसरी टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, ये वो डायबिटीज़ होती है जो कि आमतौर पर अधेड़ उम्र में 40-50 साल वाली उम्र में आमतौर पर शुरू होती है, और इसके अंदर शुरू में जो है वो गोलियों के ज़रिए से इलाज मुमकिन होता है, मगर आगे जाके 10-15 साल बाद, 12 साल के बाद जो है वो दवाइयाँ असर करना कम करती चली जाती हैं, और इस शख्स को भी आखिर में आके और इंसुलिन की ज़रूरत पड़ जाती है। तीसरे किस्म की डायबिटीज़ वो होती है जो कि प्रेगनेंसी में होती है, कि एक औरत जो कि बिल्कुल ठीक है, प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई, इसके 20 या 24वें हफ्ते पे हमने शुगर चेक कराई और वो हाई आई, तो ये शुगर जो होती है ये आमतौर पर प्रेगनेंसी के दरमियान में होती है। जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म होती है तो अब इसका जब दोबारा खून की मकदार, यानी आप शक्कर की मकदार उसमें चेक करें खून में, तो वो दोबारा से नॉर्मल हो चुकी होती है। तो ये होती है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, या वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़, यानी कि हमल के दरमियान में जो है वो शुगर होती है। मगर इन खवातीन में भी 5 साल के अरसे में 50% खवातीन जिनको के हमल के दौरान में शक्कर हुई होती है, इनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है, यानी वही डायबिटीज़ जो आम लोगों को होती है, वही डायबिटीज़ इन खवातीन को भी हो जाती है। आपको मालूम है हमारे गाँव देहात में तो बस हमल हुआ और वो चलता चला गया और 9 महीने गुजरे और बच्चा हो गया, यानी बीच में ना कोई टेस्ट होना है, ना खून का टेस्ट, ना कोई पेशाब का टेस्ट, ना शक्कर का टेस्ट, ना ब्लड प्रेशर का टेस्ट, कुछ भी नहीं होता। और उसकी जो आम तौर पर जो अलामत होती है कि बच्चा जो पैदा होता है ना, बड़ा अच्छे बड़े साइज़ का पैदा होता है, 10 पाउंड 12 पाउंड का बच्चा पैदा हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो इंसुलिन ज़्यादा यानी बन रही होती है, और उसके अंदर जो बच्चे के अंदर जो है वो बच्चे की जसामत जो है वो मसलन बढ़नी शुरू हो जाती है, और बाज़ बहुत ही छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, तो ये दोनों अलामत होती हैं। तो ये प्रेगनेंसी के अंदर जो डायबिटीज़ होती है, इसमें भी ग़िज़ा में थोड़ी बहुत एहतियात होती है, और उसके अलावा इंसुलिन पे रखना पड़ता है, लेकिन ये इंसुलिन 8-9 महीने के लिए ही सिर्फ, या 6 महीने के लिए मसलन दी जाती है, और उसके बाद जब प्रेगनेंसी ख़त्म होती है तो वो आमतौर पर ठीक हो जाती है, उसके बाद उनको डाइट कंट्रोल पर चलाते रहते हैं। इसके अलावा एक डायबिटीज़ होती है जिसको हम कहते हैं बच्चों में होती है ये डायबिटीज़, और ये भी, ये जो डायबिटीज़ होती है इसमें भी दवाओं के ज़रिए से जो है वो शक्कर कंट्रोल की जा सकती है। शुरू के कुछ अरसे तक बच्चों में नहीं, 5 साल 8 साल 10 साल के बच्चे में शुगर हो जाती है, और पहले तो ये बहुत ही कम सुनने में आता था कि बच्चे को शुगर हो गई, 10 साल का बच्चा है उसे शुगर हो गई, इंसुलिन लग रही है या शुगर की गोलियां वो बच्चा खा रहा है, लेकिन अब जो है वो इतना अनकॉमन नहीं रहा है, अब इतना ये ऐसा नहीं रहा है कि अब सुनने में ही नहीं आता, नहीं सुनने में आता है। और इसकी वजह क्या है, मसलन मुझसे अगर आप पूछें तो हम लोग छोटे थे, हम लोग गिल्ली डंडा भी खेलते थे, टायर भी होते ना खाली टायर वो भी चलाते थे, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा जो है वो बड़े हुए तो यानी फुटबॉल खेलना शुरू कर दी, क्रिकेट खेलना शुरू कर दी, हॉकी, जो चीज़ हाथ में आती थी उससे खेलना शुरू कर देते थे, ठीक है, घर की छत के ऊपर भी खेलते थे, सड़क पे भी खेलते थे, मैदान में भी जब मौका मिलता था, जब बड़े थोड़ा सा हटते थे तो हम लोग जाके खेलना शुरू कर देते थे। मतलब ये हमें अपना बचपन जो है वो इस तरह से याद है, थोड़ा सा, लेकिन अब हम बड़े हुए ना तो वीडियो गेम आना शुरू हो गए। फिर क्या होता था, मार्केट जाते थे जाके ना, वो बड़े बड़े जो है ना वीडियो गेम्स होते थे और उसमें जाके वीडियो गेम खेलते थे। और वो क्या कहते हैं उसको, फुटबॉल होती है, फुटबॉल पहले तो पाँव से खेलते थे, फिर हाथ से फुटबॉल खेलने वाला एक गेम आ गया। और वो जो है वो क्या होते हैं डब्बू, इस टाइप के गेम जो है वो आने शुरू। अब पता नहीं यहाँ पर डब्बू है या नहीं है, लेकिन हमारे मोहल्ले में डब्बू आया था शुरू शुरू में। उसी में उससे सारी माशरती बुराइयाँ भी शुरू हुई और उससे सारी अखलाकी बीमारियाँ भी शुरू हुई और उससे जो है सारी की सारी जिस्मानी बीमारियाँ भी शुरू हुई। और फिर बड़ों को हम देखते थे अपने, वो बैठे ताश खेल रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। तो ये जो माहौल था ना, ये चीज़ हमने देखते गए। आगे जाके क्या हुआ कि हर घर के अंदर जो है वो टीवी आ गया, हर घर के अंदर जो है वो अब वीडियो गेम घर के अंदर अब आप खेल सकते हैं। यानी बिस्तर से उठने की भी ज़रूरत अब बच्चे को नहीं है। वहीं पर उसको जो है पेप्सी दे दी गई, वहीं पर उसको चिप्स का एक पैकेट पकड़ा दिया गया, बस चुप करके बैठे रहो और ना टीवी देखते रहो या फिर अपना जो है वो गेम खेलते रहो। तो हमने उस बच्चे का क्या हाल किया, हमने उस बच्चे का वो हाल किया जो कि पहले हमारे, यानी कि जैसे 90 साल के हमारे दादा थे ना, तो वो भी जो है ना वो हमारे घर से लेके और 2 किलोमीटर दूर हमारी फुप्पी के घर तक पैदल चले जाते थे हम लोगों को साथ लेके। अब हमने अपने बच्चे को इस काबिल भी जो है वो नहीं छोड़ा कि वो अपनी मार्केट से जाके जो है वो रोटी ले आए मसलन। तो इसका असर क्या हुआ, इसका असर ये हुआ कि बिल्कुल ही जैसे कि बियर होता है ना, भालू भालू जैसे हो गए बच्चे, ना दौड़ना है, ना खेलना है, ना कूदना है। और क्या हाल हो गया, अब इनका हाल ये हो गया है कि अब किसी काबिल नहीं रहे, मतलब मोटे हुए चले जा रहे हैं। और शुगर चेक कराओ उनकी तो शुगर बढ़ी हुई आ रही है। तो ये सब कुछ जो है वो अपने हाथों का किया जा रहा है। मैं कहता हूँ कि अगर हम सिर्फ ये सोच लें, मतलब मेरे पास अस्पताल में बच्चे आते हैं, माँ बाप लेके आते हैं, डॉक्टर साहब देख लें यार इसका वजन ही नहीं बढ़ रहा। अच्छा करता क्या है बाप, बाप ये करते हैं कि जब ऑफिस से घर जाना है, अब बच्चे ने दरवाजे पर रोक लिया, बाबा अंदर नहीं आने देंगे, चीज़ दें। अच्छा क्या चीज़ दें बच्चे को, तो वो 1 रुपए की उन्होंने टॉफी निकाली उसको दे दी। एक टॉफी से शुरू हुआ, फिर वो 5 टॉफियां आई, फिर वो एक पूरा पैकेट जो है वो, तो वो बच्चा क्या कर रहा है, वो टॉफियां चबा रहा है, चॉकलेट खा रहा है, टॉफियां चबा रहा है। इससे क्या हो रहा है, भूख मर गई। जब भूख मर गई तो जिसामत तो नहीं बढ़ेगी, शक्कर की मिकदार यकीनन अपने लेवल से एक हद तक तो बढ़ी रहेगी, उसको जिसम कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब वो मुसलसल बढ़ी रहेगी तो जिसम लागर होना शुरू हो जाएगा बाद में और शुगर जो है वो बच्चे को हो जाएगी। तो क्या करना है, यानी इस बच्चे का किया क्या जाए, यानी कोई हल है या नहीं है। हल वही है कि हमें बच्चे को बच्चा बनाना है, ठीक है, इसको जो है दोबारा से जो है वो एक्टिविटीज़ में लेके आना है। मैंने कई मरतबा जो है वो ये पढ़ा भी और सुना भी कि रहबरे मौज़म सैयद आयतुल्ला अली खामनाई ने बार बार एक बात करी, वो क्या करी कि नौजवानों को चाहिए कि वो फुटबॉल खेलें, नौजवानों को चाहिए कि वो कोह पैमाई करें। कहा है उन्होंने, नहीं कहा, को पहमाई की भी उन्होंने के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वो जोर देते हैं, और फुटबॉल खेलने पे भी, और एक्सरसाइज पर भी, और जंगी मशकों पर भी, और फिजिकल एक्टिविटी पर। बस क्यों, क्योंकि नौजवान के पास, एक बच्चे के पास, एक आम बड़े आदमी के मुकाबले में कम से कम 3 से 5 गुना ज़्यादा एनर्जी होती है। अब वो कैलोरीज तो उसको बर्न करनी है ना, वो कहाँ बर्न करें, या तो अपने आप को बर्न करना शुरू कर दें, ठीक है, जो हमारे नौजवानों के अंदर शुरू हो जाती हैं आदतें, या क्या शुरू करे वो, या फिर वो जो है वो उल्टी सीधी फिल्मों में और इन सारे के सारे चक्करों में लग जाए, या फिर हमें उनके लिए कोई एक्टिविटी पैदा करनी पड़ेगी। हमें दोबारा से फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू करने पड़ेंगे, हमें दोबारा से हाइकिंग के लिए प्रोग्राम शुरू करने पड़ेंगे, हमें दोबारा से उन बच्चों को जो है वो फिजिकल एक्टिविटी की तरफ जो है वो लाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग ऐसा करते क्यों नहीं है, तो करते इसी वजह से नहीं है क्योंकि इमाम खुमैनी ने भी अपनी किताब में कहा है, हमें इल्म तो होता है, ठीक है, लेकिन क्या चीज़ नहीं होती, हमें यकीन नहीं होता। अल्लामा इकबाल भी बार बार अपने अशआर में जो यही बातें जो है वो बेचारे करते करते चले गए कि यकीन पैदा करो, यकीन पैदा करो, जो इल्म है, जो ईमान है, उस पर यकीन पैदा करो, ठीक है। हमें पता है न सफाई नस्फ ईमान है, हमें मालूम है, इल्म है, रसूल अल्लाह की हदीस है, इस पर ईमान भी है, इल्म भी है, ईमान भी है, फिर क्यों गंदगी है। यानी मुझे मोहम्मदी डेरा से यहाँ तक आना मुश्किल हो गया, मैं सोच रहा था मैं वापसी में कोई और शायद रूट मुझे लेके जाना पड़े, इसलिए क्योंकि मतलब समझ में नहीं आ रहा कि इल्म भी है, ईमान भी है, तो फिर क्या मसला है। फिर एक ही मसला रह जाता है कि हमें शायद यकीन नहीं है। तो हमें यकीन कब आता है, जब हम अपनी आँखों से शायद अल्लाह ताला का दीदार कर लें। अल्लाह ताला का तो दीदार नहीं होगा, जन्नत का दीदार होगा या दोजख का दीदार होगा। ठीक है। और यहां पर हमें किस तरह से यकीन आता है, मसलन हमें तब यकीन आता है जब हार्ट अटैक हो गया। हाँ यार डॉक्टर साहब कहते तो ठीक थे कि भाई शुगर कंट्रोल कर लो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लो, हाँ यार हार्ट अटैक तो हो गया। ठीक है, सिगरेट की वजह से भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको मना करते रहो, पूरी पूरी जान लगा दो उनको मना करने पे, उन पर असर नहीं होता। तो शुगर के हवाले से और ब्लड प्रेशर को भी इसमें आप अगर शामिल कर लें, तो जो मैसेज है वो ये है कि हमें एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना पड़ेगा। लाइफ जो है उसमें एक क्वांटिटी है, एक क्वालिटी है, एक मिकदार है और एक उसकी असल है, यानी वो किस मेयार है। एक मिकदार होती है और एक उसका मेयार होता है। मिकदार बढ़ा सकते हैं हम लोग जिंदगी की? शायद बढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि वक्त जो है वो मुअय्यन है, लेकिन फिर कालिम ने कहा कि फिर रात भर नींद क्यों नहीं आती। ठीक है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं? उसको भी पता था कि ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। ठीक है, दिन मुअय्यन है, आखिरी अजल जो है ना वो मुअय्यन है। हो सकता है वो 135 साल 150 साल की उम्र हो मेरी, लेकिन उससे पहले मैं अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों से सल्व कर सकता हूँ। और लोग कर रहे हैं, सिगरेट पी के कर रहे हैं, शुगर कंट्रोल ना करके कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना करके कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल ना करके कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक है मिकदार और एक है मेयार। एक है क्वांटिटी ऑफ लाइफ या लेंथ ऑफ लाइफ, और दूसरा है क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम क्या चीज़ इंप्रूव कर सकते हैं, वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ। वो किस तरह से कर सकते हैं? वो इस तरह से कर सकते हैं कि शुगर के बारे में एक मकूला बस सिर्फ याद रखें। आप लोगों के इंशाल्लाह सवालात होंगे, मैं मजीद इसको वाजे भी कर दूंगा। जो आप लोगों के सवालात होंगे वो इस पूरी तकरीर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में। एक लफ्ज़ में कहूँ मैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल किसे कहते हैं, तो मैं कहूँगा ईट लेस वॉक मोर, कम खाओ ज़्यादा चलो। बस एक लफ्ज़ के अंदर जो है ना वो सारी की सारी बात जो है वो समो दी गई है कि कम खाना है ज़्यादा चलना है। ठीक है, हम लोगों को जो खरीद के दी गई थी वो पहले ट्राई साइकिल दी गई थी, फिर बाई साइकिल दी गई थी। मोटरसाइकिल पे तो इंटरमीडिएट के बाद आए हम लोग। ठीक है, उस वक्त तक साइकिल ही चलाई है, यानी मैंने इंटर भी कर लिया था, मैंने MBBS में दाखिला भी हो गया था, तब तक मेरे पास साइकिल ही थी। ट्यूशन भी पढ़ाने जाता था साइकिल पे, पढ़ाने जाता था ट्यूशन पढ़ने जाता था तब भी साइकिल पे जाता था। अभी साइकिल नज़र ही नहीं आ रही बच्चों के पास, और कहाँ तक जाते थे पता नहीं, 10-10 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर दूर तक जो है वो साइकिल पे चले जा रहे। तो ये भी एक चलने की एक जो है वो किस्म है। और यानी ये तो हो गया वॉक मोर, लेकिन ईट लेस का मतलब क्या है कि आप वो चीजें कम खाएं जो कि जिस्म के लिए नुकसान दें। अब कम खाएं जो है ना वर्ड, ये हमें हजम नहीं होता, ये इससे इस लफ्ज से बदहजमी हो जाती है। कम खाएं, ये लफ्ज ही इस तरह का है कि कम। तो मैं ये आपसे कहता हूं कि आप लोग डाइट की बजाय जो है ना जो लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए वो है न्यूट्रिशन। अब जो है ना मसला जो है वो हल हो जाता है कि हमें एक बैलेंस न्यूट्रिशन की जरूरत है, एक हमें बैलेंस डाइट की जरूरत है। अब हमें सब कुछ खाने की इजाजत है, हमें सब्जियां खाने की इजाजत नहीं है क्या? खाने की इजाजत। हमें दूध पीने की इजाजत है? हाँ है। हमें फल खाने की इजाजत है? हाँ है। हमें सारे किस्म की कच्ची सब्जियां खाने की इजाजत है? हाँ है। हमें पानी पीने की इजाजत है? हाँ है। ठीक है, मगर अब किस चीज़ की इजाज़त नहीं है? उस चीज़ की इजाज़त नहीं है जो आपकी ग़िज़ा का हिस्सा ही नहीं था कभी। तमाम तली हुई चीज़ें, मेरी बातों पर असर नहीं होगा मुझे पता है, क्योंकि सूरह सफ़ की दूसरी आयत जो है ना उसी की हम लोग मुखालफत करते हैं। ठीक है, जिसमें कि रसूल अल्लाह ने यानी कुरान करीम के अंदर क्या है कि जो बात कहते हो, जो बात काम करते नहीं हो उसको कहते क्यों? ठीक है, तो शायद असर होना मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये समझ लें कि ये देखो कि क्या कह रहा है, ये मत देखो कि कौन कह रहा है। ठीक है, तो लिहाजा जो है मेरी बातें इस तरह से शायद जो है वो आप लोगों के लिए काबिल कबूल हो जाएं। तो बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि 50% तक उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। ठीक है, 50% तक, इससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो है वो आमतौर पर नहीं होने चाहिए। बाकी 35% या 30% तक उसमें प्रोटीन्स होने चाहिए, और बाकी जो है वो रोगनियात होने चाहिए। ठीक है, अब मुझसे अगर कोई पूछता है कि आप मुझे बता दें भाई हमें कितना तेल रोज़ाना इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि 5 चाय की चमची पर पर्सन पर डे, इसमें तीनों वक्त का खाना पकना है, तीनों वक्त का खाना इतने में पकना है। अब आप इसका जो है वो अंदाज़ा लगा लें, कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए। जैतून का तेल 99% लोगों के लिए अनअफोर्डेबल है, ठीक है ना, नहीं ख़रीद सकते। दूसरे नंबर पे पूछें तो कनोले का ऑयल होता है, वो बहुत अच्छा ऑयल होता है। और इसके अलावा जो भी तेल फ्रिज में रखने से जमता नहीं है, ठीक है, वो निस्बतन बेहतर है बनिस्बत उसके जो कि बाहर ही रखा हुआ जमा रहता है। ऐसे भी तो होते हैं ना, जो जो घी किस्म की जो चीज़ें होती हैं जो बाहर रखी हैं तब भी जमी हुई है, नहीं ऐसा तेल इस्तेमाल करेंगे जिसको अगर फ्रिज में भी रखें ना तो वो जमे नहीं। तो वो तेल यानी कि हल्का तेल है, इसका मतलब कि वो हम लोग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग एक और चीज़ की तरफ जो कि हमारे इसे कहना चाहिए कि माशरे में जो है वो बिल्कुल वबा की तरह से चीज़ फैलती चली जा रही है, हमारी शादियों में भी जो नज़र आती है। पहले मशरूबात होते थे, सब कुछ होता था, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। अब ऐसा लगता है कि रोज़ाना एक दो कोल्ड ड्रिंक अगर हमने नहीं पी तो इसका मतलब ज़िंदगी दुश्वार हो गई। यानी कभी कभार हमारे घर में सेवन अप मंगवाई जाती थी जब बदहजमी हो जाती थी। मुझे अच्छी तरह याद है हमारी जो बूढ़ी बूढ़ियाँ जो हमारे यहाँ उस वक्त जिंदा थी वो कहती ना, हाँ भाई आज बड़ी मैदे के अंदर जो है वो गर्माई है या खौलन है या पता नहीं क्या होता था, उसके लिए एक सेवन अप आती थी। तो वो जब एक सेवन अप वो 250 ml की आती थी ना, तो वो ऐसे दवा लाई जाती थी घर में। और अब माशाल्लाह से मैंने देखा है वो दो दो लीटर डेढ़ डेढ़ लीटर वाली छः छः बोतलें दोनों दोनों हाथों के अंदर लोग लिए हुए चले चले जा रहे हैं। क्या हुआ भाई, रमज़ान आ गया। अच्छा रमज़ान आ गया, आपने भी देखा होगा हर जगह पर वो पाकोला के भी, यहाँ मुसलमान जो अपने अब अमरीका मुखालिफ वो पाकोला की बोतलें खरीद के ले जा रहे हैं, और जो नॉर्मल मुसलमान हैं हमारे या जो थोड़ा सा सेकुलर हैं वो कहते नहीं पर पेप्सी पीते हैं। है कोई फ़र्क नहीं इन दोनों में, फ़र्क कोई नहीं है, ठीक है ना, किलर दोनों हैं, लेकिन वही है ना कि मीठा जहर, ठीक है ना, प्यार मोहब्बत से जो है वो गले पे छुरी भी फेर दो तो हम लोग कुछ नहीं कहते। तो इसकी जो है वो शिद्दत के साथ मुखालफत करनी चाहिए, इसके खिलाफ जिहाद करना चाहिए। जैसे आमतौर पे मैं इधर उधर और बात करता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ भाई जिहाद करना है ना, बहुत शौक है ना जिहाद करने का, शौक है ना बहुत जिहाद करने का, जहालत के खिलाफ करो जिहाद, क्यों नहीं करते। किसी ने हाथ रोका है जहालत के खिलाफ जिहाद करने से? इस मोहल्ले में जितने भी पढ़े लिखे हैं उन्हें हम फ्री में पढ़ाएंगे, जहालत के खिलाफ हम जिहाद करेंगे, कोई मना कर रहा है? कोई मना करता है? कोई हमारा हाथ रोकता है कि हमारे घर में काम करने वाली आती हैं, भंगी हैं, चमार हैं, ये हैं वो हैं, पढ़ना लिखना नहीं आता, इन सबको पढ़ा लिखा बना देंगे, इन सबको इनके हुकूक बता देंगे, इन सबको बता देंगे कि तुम कितनी तनख्वाह के ऊपर जो वो साइन करते हो और तुम्हें कितनी मिलती है, इन सबको बताएंगे कौन किस किस को कब कब कहाँ कहाँ पर धोखा दे रहा है, ये सब कैसे पता लगे जब जहालत खत्म होगी। तो जहालत के खिलाफ क्यों नहीं जिहाद करते? इस तरह से इसके खिलाफ जिहाद करना चाहिए, इसी तरह से और बुराइयों के खिलाफ है, गंदगी के खिलाफ जिहाद है, बेशुमार ऐसे चीज़ें हैं जिनके खिलाफ आज जिहाद जो है वो वाजिब है, और हम लोगों के जहनों में जो है वो पता नहीं क्या चीज़ें जो है वो ठूस दी गई हैं। अब हम अगले अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, इसके ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा वक्त ले लिया और मेरे जहन में भी यही चीज़ थी कि मैं कोई आपको किताबी किस्म का जो है यहाँ पर गुफ्तगू करने नहीं आऊँगा, बल्कि मैं आपको सिर्फ मुतवज्जे करने आऊँगा कि असल जड़ कहाँ पे, असल प्रॉब्लम जो है ना वो है कहाँ पर। वो है वो जो उसके अंदर आए ना, यानी कि मौला का भी जो कौल है कि अपने उमूर में नज़्म पैदा करो, कुरान की भी जो है वो बेशुमार आयतें कुरान के अंदर मौजूद है जिसमें इस कायनात के नज़्म की तरफ हमें जो है वो मुतवज्जे किया गया, ठीक है, लेकिन उतनी बदनज़्म जो नज़्मी जो है ना वो हम अपने मामलात में जो है वो और अपने सेहत के मामलात में जो है वो कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो है ब्लड प्रेशर, जिस तरह से कि शुगर की कोई सिम्टम्स आमतौर पर नहीं होते इस तरह ब्लड प्रेशर के भी नहीं होते। ब्लड प्रेशर की भी मुख्तलिफ किस्में हैं, बुनियादी तौर पर दो किस्में याद रखें। एक ब्लड प्रेशर की वो किस्म है जिसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसकी आमतौर पे हमें वजह नहीं मालूम होती, और जब ये डायग्नोस होता है उसके बाद से लेके पूरी ज़िंदगी जो है वो दवा खानी होती है, एक दिन भी गोलियां छोड़नी नहीं है ब्लड प्रेशर की, जिसको लिख दी गई उसको लिख दी गई। अब मेरा ब्लड प्रेशर जी बिल्कुल नॉर्मल हो गया सर, दवाई छोड़ दूँ? नहीं छोड़ूँ, क्यों? क्योंकि ये ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल हुआ है वो दवा के साथ नॉर्मल हुआ है, दवा के अलावा नॉर्मल नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यह कि हम दवा नहीं छोड़ सकते, तो इसकी हमें चूंकि वजह नहीं मालूम। अच्छा, कुछ ब्लड प्रेशर्स ऐसे होते हैं जो कि नौजवानों में या जवानों में होते हैं, जिसके अंदर के अगर हम तहकीक करें तो हमें ब्लड प्रेशर की वजह मालूम हो सकती है, और उस वजह का अगर हम इलाज कर दें तो ब्लड प्रेशर जड़ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अफराद ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20% होते हैं, और हमारे माशरे में तो समझ लें 5% ही अफराद होते हैं ऐसे जिनके अंदर हम ब्लड प्रेशर की वजह का पता लगा सकें, और वो आम तौर पर क्या होता है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है और मुख्तलिफ जो है वो मसाइल होते हैं, जो कि मैं ख्याल में इस लेक्चर की उससे जो है वो बाहर है, डोमेन से जो है वो बाहर है। मगर बस ये याद रखें, अगर किसी नौजवान का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसको तहकीक करनी चाहिए और डॉक्टर को भी तहकीक करनी चाहिए कि ब्लड प्रेशर की शायद हमें वजह मालूम हो जाए और उस वजह का हम अगर इलाज कर दें तो ब्लड प्रेशर जड़ से ख़त्म हो जाए। बाकी अफराद अगर उनको दो मरतबा 2 हफ्ते के अंदर रीडिंग्स ली जाएँ और उस वक्त पर उस आदमी ने 1 घंटे के अंदर अंदर कम अज़ कम सिगरेट ना पी हो और कम से कम 10 मिनट वो बैठा रहा हो और ब्लड प्रेशर का आला ठीक हो और वो जो देख रहा है उसको ब्लड प्रेशर चेक करना आता हो, इन तमाम के साथ अगर किसी शख्स का ब्लड प्रेशर, दो ब्लड प्रेशर होते हैं, एक सिस्टोलिक ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और एक डायस्टोलिक नीचे वाला ब्लड प्रेशर, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर किसी का 140 या उससे ज़्यादा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 या उससे ज़्यादा है तो वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है और अब इसको जो है वो इलाज की ज़रूरत है। शुरू में हम कोशिश करते हैं नमक कम खिलाएं, ठीक है, और उसके ज़रिए से जो है हम या हम लोग जो है वो ग़िज़ा के अंदर फल फ्रूट जो है उनको बढ़ा दें, चिकनाई की चीज़ें कम कर दें, वज़न कम कराने की कोशिश करते हैं, 1-2 महीना 6 महीने उसका हम कोशिश करते हैं कि शायद ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे आ जाए, लेकिन ज़्यादातर लोगों में इन सारी कोशिशों से ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे नहीं आता और अब उनको जो है वो दवा की ज़रूरत होती है। मगर अगर इसी ब्लड प्रेशर के साथ किसी शख्स को शुगर का मर्ज भी है तो अब इसके लिए जो कंट्रोल का लेवल है वो ऊपर वाला जो है वो 135 या उससे ज़्यादा और नीचे वाला 85 या उससे ज़्यादा है, यानी शुगर भी अगर है तो अब ब्लड प्रेशर कंट्रोल का लेवल ही डिफरेंट हो गया, अब इससे कम जो है वो ब्लड प्रेशर हमें रखना पड़ेगा। और ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, वही सब कुछ होता है जो कि मैं शुगर के हवाले से आपको बता चुका हूँ। शुगर की फिर भी थोड़ी बहुत अलामत सामने आ जाती हैं, कभी किसी का वज़न कम हो रहा है, किसी को पेशाब की मकदार बढ़ गई, किसी को प्यास ज़्यादा लग रही है, किसी को भूख ज़्यादा लग रही है, किसी का वज़न कम हो रहा है, मगर आमतौर पर ब्लड प्रेशर की तो कोई अलामत होती ही नहीं है। अभी मैं सखर गया हुआ था क्लिनिक करने के लिए अपने इदारे की तरफ से, वहाँ पे एक नौजवान आए, नौजवान तो नहीं कहूँगा, तकरीबन 40 ईयर्स शायद एज होगी उसकी, 3 दवाओं पर था वो, 3 किस्म की दवाइयाँ ले रहा था ब्लड प्रेशर की, उसका मैंने ब्लड प्रेशर देखा 180 और 120 था, कुछ भी नहीं था, चलता हुआ आया था मेरे पास क्लिनिक में दिखाने के लिए, कोई मसला नहीं। एक और को देखा जो कोई दवा नहीं ले रहा था, उसका ब्लड प्रेशर 230 और 130 था, ऊपर वाला 230 नीचे वाला 130, कहते हाँ मुझे थोड़ी कमज़ोरी हो रही थी बस, ये अलामत हुई इतने, और इतने ब्लड प्रेशर पे दिमाग की रग फट सकती है, ठीक है, ये इतना हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो एक बात याद रखें कि एक दफ़ा अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो गया तो एलोपैथिक मेडिसिन में ना तो शुगर का कोई परमानेंट इलाज है सिवाय इसके कि किसी का लबलबा निकाल के दूसरा लगा दिया जाए, वो एक अलग मसाइल है, वो पाकिस्तान में और दुनिया भर में भी शायद 100-125 से ज़्यादा पूरी दुनिया में नहीं होते एक साल में, और वो आपको लेक्चर में बताया गया होगा कि वो ज़िंदा आदमी से वो लबलबा लिया भी नहीं जा सकता, ठीक है, वो तो मरने के बाद अगर हम लोग अपनी ख्वाहिश का इजहार करें कि हमारा लबलबा दूसरे को लगा देना तो वो लगा दिया जाता है, तो वो एक अलग बहस में मैं चला जाऊंगा, लेकिन ये कि शुगर का कोई इलाज नहीं है और ब्लड प्रेशर उसका भी कोई इलाज एलोपैथिक मेडिसिन में नहीं है। कोई अगर आपसे ये कहता है कि मैं इन अमराज को जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा, वो झूठ बोलता है। कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो शुगर ब्लड प्रेशर को जड़ से उखाड़ के फेंक दे, नहीं, नहीं हो सकता इसका, इसके लिए जब तक ज़िंदगी है तब तक दवा खानी। एक अच्छी खबर के साथ जो है मैं आपकी इन जहमात को ख़त्म करूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह आपके जो भी सवालात होंगे उसके उसको उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा, वो ये है कि अगर कोई शख्स ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, शुगर का मरीज़ है, उसका कोलेस्ट्रॉल हाई है, सिगरेट उसने छोड़ दी, अब ये 3 चीज़ें रह गई, ये तीनों चीज़ें इतने अच्छे तरीके से कंट्रोल हो सकती हैं, इतने अच्छे तरीके से कंट्रोल हो सकती हैं कि बगैर किसी कॉम्प्लिकेशंस के जितनी अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी लिखी है वो ज़िंदगी वो गुजारेगा, 70 साल, 80 साल, 85 साल, 90 साल, जो उसकी ज़िंदगी लिखी है। मेरे वालिद साहब हैं 35 साल 40 से ज़्यादा हो गए, उनको ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है, यानी मैं जब पैदा हुआ वो दवाइयाँ जो है वो खा रहे थे, बल्कि शायद 35 साल में 40 साल से ज़्यादा से शायद है, ठीक है, और 87 यानी कि 25 साल से ज़्यादा हो गए उनको शुगर को, ठीक है, 12 साल या 14 साल हो गए उनको इंसुलिन लगाते हैं, 76 ईयर्स एज है उनकी, अभी तक 98 में जब वो रिटायर हुए उस वक्त से अब तक तकरीबन 20 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं, मुझसे ज़्यादा एक्टिव हैं, दिन रात जो है वो अपना काम करते हैं, बिल्कुल एक्टिव, चलते फिरते खाते पीते बिल्कुल आपकी तरह मेरी तरह सबकी तरह, इंसुलिन लगाते हैं, चार पांच किस्म की गोलियां खाते हैं, बिल्कुल ठीक है। उन्हें जो है वो डिप्रेशन ये हुआ था, एक दफ़ा भी वो 63 साल के हुए थे, तो उनको ये हुआ था मेरी माँ को फालिज हो गया था, मुझे फालिज होने वाला है। मैंने कहा बाबू आपको कुछ नहीं होगा। कहते क्यों? मैंने कहा बाबू उनका जब वो मरी हमारी दादी, उस वक्त उनको पता ही नहीं था, उनको ब्लड प्रेशर है, उनको शुगर है, सारी चीज़ें, उनको फालिज हो गया, 1 महीने बाद वो ईद के दिन उनका इंतकाल हो गया। मैंने कहा बाबू वो दौर अलग था, आजकल दौर ये कि आपको जो मर्ज है ना उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और आप उतना ही जिंदा रहेंगे बगैर हार्ट अटैक, बगैर फालिज के, बगैर पाँव कटाए, बगैर अंधा हुए, ये सारे मसले होते हैं शुगर वालों को, उतना ही जिंदा रहेंगे जितना कि एक आम आदमी जिंदा रह सकता है, मुझसे ज़्यादा फिट हैं वो। तो ये एक अच्छी खबर है कि दवाइयाँ, इंसुलिन, ये सारी चीज़ें मिला मिलू के आप एक हेल्दी लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं, बशर्ते कि आप जो है एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है वो अपनाने पर आमादा हो जाए। एक मरतबा बाबा जे बुलंद दुरूद पढ़ते हैं। आप बताइए कोई सवाल है तो, मेरे ख्याल में तो मैंने आधे घंटे में ख़त्म किया या नहीं? पानी पिला दें। बिल्कुल सही। देखिए हम तो अमेरिका को फॉलो करते हैं। अच्छा। हाँ, अमेरिका की जो गाइडलाइंस हैं, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की वो, और ब्रिटिश की जो गाइडलाइंस हैं वो, और पाकिस्तान डायबिटिक एसोसिएशन की जो गाइडलाइंस हैं वो, इन सब के अंदर जो मुश्तरका फैसला है वो मैंने आपको सुना दिया। अब हाँ वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मगर जो आपका सवाल है ना बिल्कुल वैलिड सवाल है कि मुख्तलिफ लैब्स मुख्तलिफ वैल्यूज़ दे रही होती है नॉर्मल की, ठीक है, तो वो जो उनके जो कागज़ छपे हुए ना, उस किसी के 20 साल पुराने छपे हुए, किसी के 10 साल पुराने छपे हुए, किसी के 15 साल पुराने छपे हुए, उसी को साइक्लोस्टाइल कर करके वो लोग जो है वो चलाते चले, वो लोग रिवाइज नहीं करते, वो लोग रिवाइज नहीं करेंगे, पैसे खर्च होते हैं ना, दोबारा छपवाएंगे, नई प्लेट बनाएंगे, प्लेट रखी हुई है उन्हें जाके प्रिंटर को दी उससे जो वो छप गया। भाई फास्टिंग में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर अगर किसी 126 से ज़्यादा है तो वो डायबिटीज़ का मरीज है। नॉर्मल कितनी होनी चाहिए? 100 से कम होनी चाहिए। 126 से बढ़ गई तो वो क्या हो गया? शुगर का मर्ज हो गया। इसके दरमियान में क्या है? वो इम्पेयर्ड है, यानी कि शुगर हो भी सकती है और वापस अपने पोजिशन पर भी जा सकता है। किसी की 105 आ जाए, किसी को 110 आ जाए, किसी को 120 आ जाए, शुगर का तो नहीं है मर्ज इसको, मगर नॉर्मल भी नहीं है, 100 से कम होनी चाहिए। अब आपको वापस लाइफ स्टाइल अपना जो है वो बदलना पड़ेगा। इसी तरह से रैंडम में अगर किसी की ब्लड शुगर जो है वो 200 से ज़्यादा है, रैंडम मतलब खाने के बाद, तो वो शुगर का मर्ज है, ठीक है, मगर नॉर्मल 140 से कम है, ठीक है, तो ये 140 से लेके 200 तक ये भी इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है, यानी ये भी वापस अपने आप को ले जा सकते हैं और ये शुगर की तरफ भी बढ़ सकता है। लेकिन आप एक वैल्यू याद रखना चाहें तो 126 फास्टिंग, 200 रैंडम, इससे ज़्यादा है तो फिर मुश्किल है। एक मरतबा दुरूद पढ़ दें। और कुछ 180 के बाद, किसी में 200 के बाद, अगर किसी को गुर्दे ख़राब हैं तो उसकी ब्लड शुगर अगर नॉर्मल भी है तब भी उसके अंदर इंसुलिन आ सकती है। प्रेगनेंसी के अंदर नॉर्मल ख़वातीन में भी आ सकती है। तो आजकल जो है हम लोग शुरीन शुगर को जो है वो एज ए कंट्रोल या एज ए अनकंट्रोल का पैरामीटर नहीं मानते हैं, ब्लड शुगर ही को मानते हैं। जी सर, हाँ सारे आप ही को दे दिए थे क्या? हैं हाइपोग्लाइसीमिया तो हो गया शुगर का मर्ज, सही है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है खून में शक्कर की मिकदार जरूरत से कम हो जाना। आमतौर पर इसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है कि 40 से कम हो जाए, कुछ लोग कहते हैं 60 से कम हो जाए शुगर, खून में अगर 60 से कम हो गई शुगर 60 मिलीग्राम से, कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। किसकी होती है? शुगर के मरीज की, जो कि दवा नहीं खा रहा हो उसकी शुगर कम नहीं हो सकती। ये होता है ना यार, मैं शुगर है कम हो रही थी तो मैंने मीठा खा लिया, तुम दवा तो खाते नहीं हो, कम कैसे हुई तुम्हारी? कम हो ही नहीं सकती। तो जो शुगर का मरीज है वो इंसुलिन ले रहा है, ठीक है, या उसके गुर्दे खराब हो चुके हैं और वो गोलियां खा रहा है, ये दो लोग हैं जिनकी के शुगर जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा कम हो सकती है। शुगर का मरीज़ जो इंसुलिन पर हो उसकी शुगर नॉर्मल से कम हो सकती है, और जो दवाइयाँ खा रहा है मरीज़ उसके अगर गुर्दे अगर मुतासर हो चुके हैं तो वो भी शुगर जो है उसकी कम हो सकती है। और कोई सवाल?
मैं शुगर का पेशेंट हूँ।
हाँ।
और अक्सर औकात है वो 200 से अबर के लिए जाती है।
सही।
इंसुलिन ले रहा हूँ।
सही।
बाद मतलब 300 भी पहुँच जाती
है।
यानी हालांकि कोई नॉर्मल सूरत में आम गुजा जो है जो खा रहा हूँ मैं वैसी चीज़ें, लेकिन इवन दैन मैंने चेक किया तो 300 भी पहुँच गए। तो ऐसी सूरत में क्या उसको जो है वो
इंसुलिन जो है उसकी कोई डोज लिखी हुई नहीं है, उसकी डोज शुगर चेक करने के साथ एडजस्ट करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है वो सुबह में 40 यूनिट ले रहा है, शाम में 20 यूनिट ले रहा है, मिसाल दे रहा हूँ। उसकी सुबह फास्टिंग की शुगर जो है वो बढ़ी हुई आ रही है, तो वो रात वाली इंसुलिन की मकदार बढ़ाएगा ताकि सुबह की जो शुगर है ना वो नॉर्मल आ जाए। किसी की शाम की अगर बड़ी भी आ रही है उसको सुबह की डोज जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो वो दो चार दिन एक हफ्ते के अंदर जो है ये चीज़ एडजस्ट हो जाती है। मगर ये होती कब है? ये तब होती है जब आपके पास इंसुलिन हो, आपके पास ग्लूकोमीटर हो, और आपका मुसलसल एक डॉक्टर से या एक नर्स से जो कि शुगर को कंट्रोल करना जानती हो या जानता हो उससे आप रابطे में हो, फ़ोन पर जाना ना पड़े, फ़ोन पर रबते पे हो। तो ऐसे इदारे जो है वो मौजूद हैं, ऐसे क्लिनिक्स मौजूद हैं, ऐसे हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। मसलन मैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में काम करता था, वहाँ पर 24 घंटे ये सहूलत मौजूद है कि आप जो है वो अगर वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, तो आप 24 घंटे जो है उनसे अपने शुगर के बारे में मशवरा ले सकते हैं। तो वो एक आध हफ्ते में जो है ना आपकी बिल्कुल डोज जो है वो एडजस्ट हो जाती है, फिर आपकी फास्टिंग रैंडम बिल्कुल सही चलती रहती है। ग़िज़ा के बारे में बस थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है कि जैसी पहले दिन ग़िज़ा खा रहे थे वैसे ही आखिरी दिन तक खानी है।
अगर जो वीकनेसेस जो डेवलप होती है अदर देन शुगर, जैसे कि वीकनेस जो है लेग्स में है या जिस्मानी कैफियत कभी सी या थरथराहट पैदा होती है, उसके ऊपर जो है हाउ यू हैव टू कंट्रोल?
यू कैन कंट्रोल इट बाय सम वाइटामिंस, अगर उनकी कमी महसूस कमी हो गई है। मैं आपके सवाल का ही आपको जवाब दे रहा हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपकी शुगर का कंट्रोल जो है वो पहले 100% हो। अच्छा, शुगर का कंट्रोल हमने बिल्कुल 100% कर लिया, हमने वाइटामिंस भी खा लिए, हमने ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल कर लिया, अब क्या करें? अभी भी कमज़ोरी है। तो भाई जो चीज़ डैमेज हो चुकी है वो तो रिपेयर नहीं होगी, अब क्या चीज़ हो सकती है? वो ये हो सकता है कि मजीद ख़राब होने से उसको बचाया जाए। तो मसला यही होता है कि एक आता है मरीज़ मसला हमारे पास, वो कहता है भाई सांस लेने में जो दुश्वारी हो रही है, सिगरेट 20 साल से पी रहा है, सांस लेने में अब दुश्वारी शुरू हो गई। अब ये नहीं हो सकता कि वो 100% ही फेफड़े सही हो जाएंगे, नहीं, वो जो डैमेज हो गया 20 साल में वो तो हो गया, अब हाँ मजीद डैमेज होने से उसको जो है वो बचाया जा सकता है। तो अगर ऐसी कमज़ोरी आ गई है, इस कमज़ोरी के साथ भी इंसान जो है वो ठीक रह सकता है, थोड़ी सी विल पावर चाहिए होती है, चलना फिरना थोड़ा सा मजीद बढ़ाएं, शुरू करें। जैसी बात है इस गर्मी में तो चलने का कोई भी मशवरा नहीं देगा, 6 बजे से 7 बजे तक का जो टाइम है बेस्ट टाइम है मेरे ख्याल में, उस वक्त पर चलना चाहिए। जितना चलेंगे उतनी मजबूती आएगी जिसम के अंदर ख्याल में, और प्लस यही है कि जो डैमेज हो चुका है उसको तो रिवर्स करना जो है बहुत मुश्किल काम है। और कुछ सवाल? कोल्ड ड्रिंक को अगर गर्म पड़ के पिए ना तब भी गलत है। कभी कभार जहर पिया जाए, यही सवाल है ना आपका, या कोल्ड ड्रिंक का पूछ रहे? कोल्ड ड्रिंक का नहीं, कोल्ड ड्रिंक का नहीं पूछ रहा, आप जहर का पूछ रहे हैं। नहीं, इसका जवाब तो नहीं में रहेगा, नहीं पीना है इस। मैं आपको पता है कि एक पता नहीं आप लोग पढ़ के क्यों नहीं पीते, मैंने आप एक दफा पढ़ना शुरू करें ना उसमें है क्या, एक दफा पढ़ें तो सही उससे। एक जो 250 ml की कोका कोला की बोतल होती है उसमें 9 चाय के चमचे शक्कर होती है, 9 चाय के चमचे, 180 कैलोरीज होती है उसके अंदर, 9 teaspoons ऑफ शुगर। एक प्यारी चाय घोल के पिए तो उसे कितना मीठी हो जाती है, कड़वा तरीन शह है ये कोक जो है ना, कड़वी तरीन शह है, उसको मीठा करा जाता है शक्कर के जरिए से। ठीक है, और वो आपको पेश किया जाता है कि इसको पिए, जहर पिला रहे हैं आपको। आपके किसी वो जो होते हैं ना पहले, जैसे कॉपर के या मुख्तलिफ जो वो मेटल की चीज़ें होती थी, उस पर जंग लग जाता है, कोका कोला डालें उस पर और उसे साफ़ करें, देखें कैसा साफ़ हो जाता है। साफ करने कहीं पर, सॉरी अभी थोड़ा सा रुक जाए, कहीं पर ऑयल वगैरह पड़ा हुआ ना वो साफ़ नहीं हो रहा, उसके ऊपर आप कोका कोला डाल दें, एक बोतल जो है ना वो लड़ दें उसके अंदर, ठंडी हो या गर्म हो, और उसके बाद आप साफ करें, ऐसा क्लीन हो जाएगा ना, चमक जाएगा वो ऑयल, ऐसी चीज़ है वो। उसमें कार्बोनिक एसिड होता है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसके अंदर पता नहीं कौन कौन से और से मेटल्स पड़े हुए होते हैं। ज़रा ईमेल्स वगैरह आप लोगों के पास नहीं आती, अभी तो लोगों ने उसके अंदर वो भी मिलवा दी है, अल्कोहल भी मिलवा दी है, पता नहीं वो सचमुच में मिली है या नहीं मिली, लेकिन बहरहाल शायद दूर करने के लिए कहा गया हो, लेकिन बे इंतहा ख़तरनाक चीज़ है। यानी ये जो बच्चों में जो शक्कर हो रही है उसमें एज ए कॉजिटिव एजेंट जो है वो पेप्सी को जो है कल्प्रेट करार दिया जा रहा है, एज ए कॉजिटिव एजेंट, यानी इसकी वजह से बच्चों को जो है वो शक्कर हो रही है। हाँ उन्हें मतलब शक्कर जब हो जाती है तो और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, फिर बच्चे भी नहीं होते इतने आराम से, बहुत मेहनत करनी पड़ती, मुश्किलात होती है ना। जी सर, इसके खिलाफ अभी तक यौमुल कुद्स वाले दिन इसकी जगह, उसकी जगह पर इसकी जगह मुजाहरा कर लें, या चलें यौमुल कुद्स भी मना लें, यौमुल कुद्स भी मनाएं, एक मुजाहरा इसके लिए भी करें, क्यों नहीं करते, किसने रोका है? मैं तो कहता हूँ ये सिर्फ सब पूरे पाकिस्तान को छोड़े जाफरे तैयार से खत्म कर लेते हैं, अम्मारे यासिर से खत्म कर लेते हैं, नादे अली के ऊपर नहीं बिकेगी, मोहम्मदी डेरा में नहीं बिकेगी, न्यू रिजविया सोसाइटी में नहीं बिकेगी, यही कर लें। मैं तो कहता हूँ मुझसे क्या सवाल किया जाएगा, मुझसे ये सवाल किया जाएगा कि तुम्हारे चार बच्चे थे तुमने उनको पीने दी, पहला सवाल मुझसे ये किया जाएगा, मन रब्बों का मन नबियों का मन इमामों का बाद ये पूछा जाएगा, तुमने उनको पीने दी? मैं क्या जवाब दूँ? मैं कहूँगा नहीं पीने दी। क्या पिलाया उनको? मैंने उनको लेके गया बहुत दूर, मेरे घर से जो है एक दुकान है वहाँ पे दूध की बोतल मिलती है और लस्सी मिलती है, मेरी बच्चियाँ वो पीती हैं, मैं वो पिलाता हूँ उनको, लेके जाता हूँ उनको, लस्सी पिलाता हूँ उनको, दूध की बोतल पिलाता हूँ। मेरे बच्चे जो हैं वो बाहर जाके अगर बारबेक्यू भी खाएंगे ना तो उनको ये पता है कि पानी की ठंडी बोतल आएगी, पेप्सी नहीं आएगी, कोका कोला नहीं आएगी, फांटा नहीं आएगी, उन्हें पता है, मतलब उनके अंदर बिल्ट इन है ये चीज़, उन्हें पता है कि बाबा जो है ना, मतलब उनको पता ही नहीं है कि इनको ये पीनी है, क्या करना है? उसके बाद जाएंगे जाके फालूदा खाएंगे, उसके बाद जाएंगे या फालूदा नहीं खाएंगे तो जाके उनको दूध की बोतल पिलाऊंगा, लस्सी पिलाऊंगा, मेहनत करनी है यार अपने बच्चों पे। बाकी ये कि पाकिस्तान में आने से रोके, आप ईरान में आने से रोक दें, आप सऊदीया में आने से रोक दें, आप अफगानिस्तान में आने से रोक दें, कहाँ से रोकेंगे आप, किधर से रोकेंगे आप अमेरिका में आने से रोक दें, आप यूरोप में आने से रोक दें, आप कहाँ से आने से रोकेंगे भाई? इन ये तो आप चलो ये तो फिर भी कोल्ड नहीं गए, 9% ऑफ योर रेवेन्यू इज जनरेटेड बाय टोबैको कंपनीज, 9% बंद कर दो सिगरेट, बैठ जाएगी आपकी इकॉनमी। मसला वो नहीं है, मसला यार मैं क्या करूँ, मुझे सिगरेट नहीं पीनी, मुझे पेप्सी नहीं पीनी। आज हम लोग यहाँ जो बैठे वो तो ऐद करके उठे कि सिगरेट छोड़नी है, पेप्सी छोड़नी है, ये कोल्ड ड्रिंक छोड़नी है, ख़त्म हो गई बात, मतलब यहाँ से शुरू होगा ना। बाकी तो मैंने कहा कि असल में जो ज़रूरत है वो तो जिहालत के खिलाफ जिहाद की ज़रूरत है प्रॉपर तरीके से। कौन कह रहा है? आप चल के देखे तो सही, मेरा तो आधे से ज्यादा खानदान वहीं पे रहता है भाई, मैं जानता हूँ ना उन बच्चों को। आप जाके इंटरनेट पे उठा के तो देखें कि यूरोप के अंदर एक पॉइंट जो है इसके अंदर रह गया, मैं सोच के आया था कि बयान करूंगा। पाकिस्तान में एक सर्वे हुआ और उस सर्वे में उन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान के चारों सूबे जो हैं वहां पर शुगर जो है वो सबसे ज्यादा किस जगह पर है और सबसे कम कहां पर है। सारी जगहों पर तकरीबन एक जैसे रिजल्ट्स आए, लेकिन एक जगह ऐसी थी पाकिस्तान में जहां पर के शुगर की बहुत कम रेट्स आए, वो क्या था? वो था पंजाब। पंजाब के अंदर जो है वो खासतौर पे देही इलाकों में, देहातों में पंजाब के शुगर जो है वो रिमार्केबली यानी सिग्निफिकेंटली लो है एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। क्या वजह है, क्या खास बात है पंजाब में? बात यह है कि सुबह भाई फजर की नमाज से भी एक डेढ़ घंटा पहले घर से निकलते हैं और खेती बाड़ी पर लग जाते हैं, और उसके बाद 10-11 बजे तक जो है ना वो काम करते हैं, और अपने साथ जो सुबह 4 बजे लेके गए होते हैं ना मक्खन और रोटी वो खाते हैं 8-9 बजे बैठ के, और फिर काम में लग जाते हैं। फिर जब धूप तेज होने लगती है ना तो वापस आ जाते हैं, फिर 3-4 बजे जो है वो 4-4:30 बजे फिर निकल जाते हैं, फिर शाम तक रात तक काम करते रहते हैं। उनकी औरतें भी काम करती हैं, उनके मर्द भी काम करते हैं, और पीते क्या है और खाते क्या है, वो पेप्सी नहीं पीते, वो दूध पीते हैं, वो लस्सी पीते हैं, वो छाछ पीते हैं, वो ये पीते हैं चीज़ें, आप भी पियो यार। मसला ये है कि हमारी पाकिस्तान का हिस्सा है, और वहाँ पर जो है वो शुगर जो है वो कम है। बाकी जो बहुत सारे मसाइल हैं उनका जवाब जो है वो यही है कि भाई जब हमें यानी वो ये जो अपनी जान छुड़ाने वाली बात कर लें या अपने ऊपर जिम्मेदारी बढ़ाने वाली बात कर लें, जिस तरह से मेरी इस जुमले को लेना चाहें आप लोग ले सकते हैं, वो ये है कि भाई पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल का हल जो है वो एक आदिलाना हुकूमत का क़याम है। आदिलाना हुकूमत होनी चाहिए, उसके लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए, यहाँ से ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। ये जुमला कहने से ज़िम्मेदारी कम हो जाती है, लेकिन जब हम ये कहते हैं ना कि आदिलाना हुकूमत का क़याम हमारी ज़िम्मेदारी है, तो यहाँ से जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, आप बता दें ईरान के साथ मसाइल ख़त्म हो गए, उन्होंने तो इस्लामी हुकूमत कायम कर ली, मसाइल ख़त्म हो गए, मसाइल और बढ़ गए, ये भी हमला करने को तैयार, वो भी हमला करने को तैयार, ये भी मसले हो, मसाइल तो बढ़ते हैं, लेकिन भारत हल जो है ना वो यही है कि एक आदलाना हुकूमत होनी चाहिए जिसके अंदर जिसके ज़रिए से जो है वो हम लोग आगे बढ़ सकें। जी सर, उसके अंदर भी कुछ नेचुरल जूसेज हैं, ठीक है ना, उस पर आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ होता है कि किसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर और आर्टिफिशियल कलर डाले गए हैं। वो आमतौर पे कलर कौन से होते हैं, यही जो दुपट्टे नहीं रखते, ठीक है ना, यही वाला कलर होता है। वो जो असल कलर है जो कि फूड कलर जो कहलाते हैं वो बहुत महंगे हैं, वो उनका इम्पोर्ट करना भी बहुत मुश्किल काम है। तो ये जो हमारे जो नॉर्थ कराची में और इधर उधर जो ये फैक्ट्रियाँ लगी हुई ना वो इम्पोर्ट नहीं कर सकती, तो वो कौन सा कलर इस्तेमाल करेंगे, वो वही कलर इस्तेमाल करेंगे जो इनको जो है रंग कार्ड से मिलता है। तो आर्टिफिशियल कलर मिला हुआ कोई जूस इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी। क्या करें, नहीं पिए, नहीं पीना है, जाएं जाके खरीद के लाएं और बनाएं घर में, कौन मना कर रहा है भाई, केला लेके आए, माल्टा लेके आए, सेब लेके आए, बनाएं, चीकू लेके आए, शेक बनाओ पियो। असल में हमारा मसला ये कि ईजी चाहिए ना, आसान, बस बाहर निकलो 15 रुपए का डब्बा खरीदा पी लिया, अरे भाई ये क्या
है।
वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर वो नेचुरल है आप उसमें पढ़ लें, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि बहुत सारे होते हैं उसमें लिखा हुआ होता है नो प्रिजर्वेटिव्स नो आर्टिफिशियल कलर्स एडेड, ये लिखा हुआ होता है उस पर ना, अब वो पियो। जहालत खत्म करें, शहीद मुतारी ने इसके ऊपर एक मजमून लिखा है सुखन किताब में इल्म के हवाले से, तो उसके अंदर उन्होंने कहा है जहालत के खिलाफ जिहाद को उन्होंने नाम दिया मुकद्दस जिहाद, जैसे क्रूसेड होता था यानी जो मुसलमानों के खिलाफ जो जिहाद होता था उसको ये लोग मुकद्दस जिहाद कहते थे ईसाई जो थे। तो शहीद मुतारी ने जहालत के खिलाफ जिहाद को मुकद्दस जिहाद का नाम दिया है, तो ये मुकद्दस जिहाद तो हम सबको करना है। बारह पढ़ के ही आप पिए, ऐसे ना पिए बिला वजह। और अब तो लस्सी भी मिलने लग गई है डब्बों में, आपने देखा होगा नमकीन लस्सी के भी डब्बे मिल रहे हैं, यार वो पी ले। ना तो खाने पीने से ताल्लुक है ना जहनी दबाव और टेंशन से, दोनों चीज़ों से नहीं है, ना खाने पीने से ताल्लुक है ना टेंशन से ताल्लुक है। शुगर जिसको होनी है उसको होगी, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं उसको डिले कर सकते हैं, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये विरासती है, जैसे आपको शक्लो सूरत कदो कामत ये सारी चीज़ें आपको विरासत में मिली है ना अपने वालदेन से मिली है, इसी तरह से ये अमराज जो है ना हमें विरासत में मिलते हैं, शुगर ब्लड प्रेशर ये सारी चीज़ें, हाँ इसको आप डिले कर सकते हैं। आपको शुगर 40 साल की उम्र में होनी थी, आप उसको 70 साल की उम्र तक ले जाएं। मैंने देखा है लोगों को जिनको 65 साल की उम्र में शुगर हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, कोई मसला नहीं हो रहा है, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन 20 साल बाद होगी, 20 साल बाद देखा जाएगा 85, 80, 90 के होंगे तो, ठीक है ना, उस वक्त तक कंट्रोल कर लें। तो लोग चलते हैं, मैंने देखा है 90-90 साल के लोग आते हैं डायलिसिस करा रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। और कोई बात?
शुगर के साथ ब्लड प्रेशर भी अगर है और वो चेक कराया गया तो वो नॉर्मल है, लेकिन वो ब्लड प्रेशर का मरीज पहले रहा शुगर बाद में, तो क्या ब्लड प्रेशर का जो है वो
इलाज होगा?
इलाज साथ साथ करता
है। बिल्कुल, इलाज साथ साथ करता रहे, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं ना सिर्फ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं बल्कि हार्ट अटैक से बचाती हैं, बल्कि गुर्दे के फेल होने से भी बचाती हैं। तो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर ही नहीं कंट्रोल कर रही होती हैं बल्कि इन तमाम चीज़ों से भी इंसान को जो है वो बचा रही होती है। खुद करेगा, खुद करेगा। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होती है? एनर्जी, उसके अंदर 9 की बजाय जो है वो उन्होंने 12 चमचे शक्कर के डाल दिए होंगे। यार लस्सी से ज्यादा किसी चीज में जान होती है? लस्सी पी है तुमने? लस्सी से ज्यादा जान होती है उसमें? तो लस्सी पियो यार। एडवर्टाइजमेंट मतलब कहाँ पे होती है एडवर्टाइजमेंट? कौन सा मीडिया, कौन से चैनल? मेरे घर में तो ईरान की डिश लगी हुई है, मेरे घर पे तो ये चैनल नहीं आते, मेरे बच्चों को तो नहीं पता इनका। मत लगाएं, मत चलाएं चैनल, नहीं तो आप करें ना अपने आपको अपने घर का माहौल खुद बनाना है ना, आपसे तो आपके घर के बारे में सवाल किया जाएगा कयामत में। बात ये कि देखें, हम लोगों को इस तरफ अपने बच्चों की तरफ हम अगर मुतवज्जे नहीं है तो यार क्या पड़ोसी होगा? मुझे ये बताओ कि हमें अपने बच्चों की तरफ खुद मुतवज्जे होना है, हमें अपने बच्चों की तरबियत खुद करनी है, हमें अपने बच्चों के बारे में खुदा को जवाब देना है। अब हाँ, हमें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। मुझे अपने ऊपर जब कंट्रोल नहीं है तो मैं बच्चों पे कैसे कंट्रोल करूँगा? मुझे पता है आप लोग आइंदा मुझे नहीं बुलाएंगे, इस तरह की बातें करने वाले जो हैं वो एक ही दफ़ा आते हैं, लेकिन अपने ऊपर तो पहले कंट्रोल करो भाई। आप उसे फुटबॉल के ग्राउंड लेके जाएं और उसे खेलें उसके साथ, आप फुटबॉल सड़क पे खेलें यार, गलियों में खेलें, ये इमाम बारगा का ये जो बारगा सहन है इस सहन में खेलें बैठ के आप। भाई आप छत पे जाके अपनी खेलें आप, मतलब देखो खेलने वाले तो बनो ना, बात यार कि खेलने वाले एक दफा सोचने खेलना है, फिर देखो यार कितनी जगह यहाँ से सीधी बस जाती है ये आगे बिन कासिम की तरफ, इतने सारे पता नहीं कौन कौन से नाम है पार्कों के यार ये बने हुए। हम लोग तो तरसते हैं, हम लोग तो नॉर्थ में रहते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पर बचपन में छोटे थे आते थे, मोहम्मद डेरे में मेरी खाला रहती हैं उनके साथ हम अंदर जाते थे बागों के अंदर ना, अमरूद के बाग और पता नहीं कौन कौन से बाग, वो वहाँ पर जाके स्विमिंग भी कर रहे हैं सब कुछ। मलीर तो यार मशहूर है भाई, अब हम मलीर में रह रहे हैं और आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरे पास जो है वो बच्चों के लिए जो वो नहीं है, यार ये कैसे कैसे कह रहे हैं भाई, मलीर है ये तो। नहीं लेकिन मलीर से उस तरफ आप चले जाएं, पटरी के उस तरफ चले जाएं और उससे आगे चले जाएं आप, वो पोपट हाउस से भी आगे जाके आप देखें उस तरफ जो है, अभी तक मेरे ख्याल में तो वही माहौल है। ये तो चंद दिनों की बात है इंशाल्लाह ताला, ये इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा, लेकिन मसला ये भाई कि अगर हम लोग अपने बच्चों को बिल्कुल ही इसे कहते हैं ना उधार पे दिया हुआ है, ठीक है ना, और वो स्कूल वाले जो है वो तरबियत कर देंगे और बाकी तरबियत टीवी कर देगा और बाकी तरबियत जो है वो दोस्त अहबाब कर देंगे, इस तरह से अगर अपने बच्चों को पालना है तो भाई पैदा ही नहीं करो। अब अगर कर दिया है ना पैदा तो अब जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने डाल दी है, ठीक है, और इसको पूरी तरह निभाना है, इनको मीडिया से बचाना है, ठीक है, इनको इन वल्गर चैनल से बचाना है, इनको इन मुजरे सेहत चीज़ों से बचाना है, वरना बड़ा हो के बच्चा अगर कुछ करे ना गलत तो भाई जो चीज़ जा रही है पेट में और जो चीज़ आंखों के जरिए से रूह में जा रही है, ठीक है, वही बाद में बाहर आएगी, फिर उस बच्चे से शिकायत मत करें कि ये बदतमीजी कर रहा है या मेरे काबू में नहीं है, फिर ये ना कहें क्योंकि अपने हाथों का किया धरा है। अब बच्चा पैदा होता है ना तो उसको कुछ नहीं पता होता, उसको जो पिलाओ और जो दिखाओ वो देखेगा। मेरे बच्चों ने भी बड़ा शोर मचाया, पापा ये क्या लगा दिया आपने, ये कौन सी जबान बोल रहे हैं, लेकिन भाई उस पर भी कार्टून आते हैं, उस पर भी फिल्में आती हैं, उस पर भी सारे प्रोग्राम्स आते हैं, अब उनको वो बले बले तो अब करना उन्होंने शुरू कर ही दिया है, आगे जाके सीख भी गए काफ़ी कुछ, मुझसे ज़्यादा आती है अब उनको, क्यों वो ज़्यादा टाइम लगाते हैं उसके ऊपर, लेकिन क्या है, मुझे ये मालूम है कि ये सेफ है। एक चीज होती है ना कि हम जब कहीं जाते हैं, अब बच्चे को आप हाथ में छुरी तो नहीं पकड़ाते ना, छुरी पकड़ाते हैं अपने आप बच्चों को हाथ में, बच्चे को आप खुली हुई सेफ्टी पिन हाथ में पकड़ाते हैं तो वो अपने मुंह में डाल ले, नहीं पकड़ाते ना, क्यों नहीं पकड़ाते? उससे ज्यादा नुकसानदेह हैं चीजें, उससे ज्यादा नुकसानदेह ये पेप्सी, उससे ज्यादा नुकसानदेह है टीवी चैनल्स। भाई क्यों नहीं, अपने आपको कौन रोक रहा है? आप अपने ये जो पूरा मोहल्ला है आपका, इसके अंदर एक केबल इस्लामी टाइप का कोई चला लें यार, कोई मना कर रहा है क्या? चलाएं ना टेक केबल, उसको लगाएं यार, क्या जरूरत है इन बल्कर चैनल्स की? और बंद कर दें जियो को और ये ARY को और हम टीवी को और जितने ही उल्टे सीधे चैनल है सबको बंद करें। आपको खबरें सुननी है, खबरों का चैनल जो है कोई कायदे का ढूंढे उसके ऊपर खबरें। मेरे तो मोबाइल पे जो है वो दूसरा वाला मेरा बड़ा एक मोबाइल है, उसके ऊपर 24 घंटे जो भी लेटेस्ट न्यूज है वो आती रहती है मोबाइल पे, अगर खबरों का इतना ज्यादा शौक है।
क्या ये चीज़
यूज़ करते हैं लोग? अगर आप ये कह रहे हैं ना कि हम एक चीज को छोड़ने की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो शायद हेल्पफुल हो सकती है और यकीनन हेल्पफुल है।
हाँ आते
हाँ, आपने सर टैंक बना लिया, आपने रूह अफ़ज़ा बना लिया, आपने बिल्कुल बिल्कुल सही चीज़ है। मैं उसके अंदर मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप जो है वो पहले दिन ही मुसलमान हो जाएंगे और कलमा पढ़ लेंगे और नमाज और ताज्जुद सब, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। आपको जब आप जब चेंज की तरफ जा रहे होते हैं ना तो मेहनत बहुत करनी पड़ती है। मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब घर में जो है वो ला के माल्टे ला के और उनका जूस निकाल के और मेहमानों को पिलाना मुश्किल काम है और आजकल के दौर में शायद नामुमकिन काम है। लेकिन भाई पेप्सी और इन कोल्ड ड्रिंक्स का तो अल्टरनेट मौजूद है ना, अब आपने खुद ही नाम ले लिया, ये लीमू पानी आता है और टैंक आता है और वो बेशुमार किस्म की इस तरह की चीज़ें जो अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके इनको भी छोड़ना है। बात ये है कि एक ऑब्जेक्टिव सामने रखें और उसके बाद अपना रोड मैप बनाएं और चलना शुरू कर दें। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ भाई पहले दिन जो है वो हर चीज़ से महरूम कर दिया गया, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि एक रोड मैप तो बनाए ना अपने लिए, हाँ भाई मुझे ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है और इस रास्ते से गुजरना है। बाद में आपके घर में मेहमान आएंगे, उनको भी पता होगा कि यार इनके घर में ये मिलता है और ये नहीं मिलता। चाय, हाँ चाय पिलाएं, चाय में क्या हर्ज है, चाय अच्छी चीज है, पिए। बहुत ज्यादा तो पानी भी गलत है, मतलब बहुत ज़्यादा पीना शुरू करते हैं, पानी देखें क्या हाल होता है।
चाय में हमारे बहुत ज़्यादा कॉफ़ी है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीने के लोग आते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग हो तो अच्छी होगी वरना नहीं होगी, ये कॉन्सेप्ट नहीं है स्ट्रॉन्ग ना हो
तो अपना टेस्ट डेवलप जो हो गया ना उसकी बात है। लेकिन चाय मैंने अभी तक इसके बारे में कहीं ये नहीं पढ़ा कि नुकसानदेह है सेहत के लिए। लेकिन मसला ये कि हम लोग चाय पी रहे होते हैं या चीनी पी रहे होते हैं, ठीक है ना, ये सोच लेना चाहिए। मतलब चाय के अंदर इतनी चीनी डालना कि चमचा खड़ा हो जाए, मतलब ये सही नहीं है ना, क्यों इतनी चीनी जो है उसके अंदर डाली जाए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज कॉफी भी सही है, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन ये कि चीनी जो है ना, मतलब चाय पीने लेकिन उसमें चीनी इतनी भर लेना वो जो है वो सही नहीं है। मैं खाली हाँ, आपने फिर इसका मतलब पीते नहीं देखा हाँ, और वो एक नहीं पीते हैं बच्चे, एक नहीं होता दिन में, वो फिर वो दो तीन पी रहे होते हैं।
250 ml
अच्छा, यानी वो जो हाँ जो डिस्पोजेबल आती है वो तो 300 और 500 की बोतल होती है, बहरहाल इस दुआ के साथ के खुदाबंद आलम हमारी इस इबादत को कबूल करे, हमें खुदाबंद आलम जो है एक मुनज्जम और एक मुतवाजन जो है वो ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और एक आदलाना हुकूमत जिसके मुतमन्नी हम सब लोग हैं और उस मुंजिये बशरियत, बिल्कुल, और उस मुंजिये बशरियत जो कि इस तमाम के तमाम जिसे कहते हैं ना कि जहां दर इंतज़ार अदालत, अदालत दर इंतज़ार मेहंदी, कि अदालत को खुद जो है वो हज़रत इमाम ज़माना का इंतज़ार है, उनकी जद्द अज़्ज़द ज़हूर के लिए और तमाम ज़ालिमाना हुकूमतों के खात्मे के लिए एक मरतबा दुरूद पढ़ते हैं। गर्मी से किस तरह से बचा जाए, अपने जिस्म को उरियां रख कर जो मसाइल पैदा होते हैं वो शायद किसी गोली और किसी चीज़ से दूर ना हो सकें। पानी का इस्तेमाल जो है वो फ्रीली करना चाहिए, ज़्यादा पानी पीना चाहिए इस मौसम के अंदर। कम अज़ कम रिक्वायरमेंट जो है, कम अज़ कम ज़रूरत जो एक इंसान की है वो कम अज़ कम 12 गिलास है, ठीक है।